मतिर्मयि निबध्येयम् न विपद्येत् कर्हिचित् प्रजा सर्ग निरोधेऽपि स्मृतिश्च मदनुग्रहा मतिर्मयि निबध्येन मदिर् निबध्येन न विपद्येत् पद और तात्पर्य एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद द्वारा मेरी भक्ति में निरत बुद्धि कभी भी वियुक्त नहीं होती। यहां तक कि सृष्टि एवं संहार के समय भी मेरे अनुग्रह से तुम्हारी स्मृति बनी रहेगी। तात्पर्य भगवान के प्रति की गई भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती, क्योंकि भगवान शाश्वत हैं, अतएव उनकी सेवा में लगाई गई बुद्धि या उनके प्रति किया गया कार्य भी स्थाई होता है। भगवद गीता में कहा गया है कि भगवान के प्रति की गई ऐसी दिव्य सेवा जन्म जन्मांतर तक संचित हो जाती है, और जब भक्त पूर्णतया परिपक्व हो जाता है तो वह अपनी सारी सेवा के आधार पर भगवान के सानिध्य में जाने के योग्य हो जाता है। भगवान की इसी संचित सेवा कभी विनष्ट नहीं होती, अपितु पूर्णतः परिपक्व होने पर बढ़ती जाती है। ओम। मेरी भक्ति में निरत बुद्धि कभी भी वियुक्त नहीं होती। यहां तक कि सृष्टि एवं संहार के समय भी मेरे अनुग्रह से तुम्हारी स्मृति बनी रहेगी। यहां स्वयं भगवान के ये शब्द जो वो नारद मुनि को कह रहे हैं, और नारद मुनि जो व्यासदेव जी को सुना रहे हैं कि जब भगवान ने अपना दर्शन नारद मुनि को दिया और नारद मुनि पूर्ण प्रकार से भाव विभोर हो गए थे भगवान के दर्शन को प्राप्त करने के पश्चात, परंतु भगवान ने केवल कुछ समय के लिए अपना दर्शन दिया और तुरंत भगवान अदृश्य हो गए, अंतर्धान हो गए, और भगवान ने फिर नारद मुनि को कहा, केवल भगवान की वाणी सुनाई दी नारद मुनि को, और भगवान कहते हैं कि क्योंकि तुम परिपक्व नहीं हुए हो अब तक अपनी भक्ति में, इसलिए मेरा पूर्ण दर्शन नित्य काल से तुम नहीं कर पाओगे। भगवान यहां तक कह रहे हैं कि हे नारद, तुम्हारी भक्ति अब तक अपूर्ण है, और जब भगवान ने इस प्रकार से कहा उसके पश्चात भगवान गुणगान करते हैं नारद मुनि का। ऐसा नहीं कि नारद मुनि की भक्ति अपूर्ण थी इसलिए भगवान ये कह रहे थे कि तुम्हारे लिए कोई आशा नहीं है मुझे प्राप्त करने की। अगले श्लोक में भगवान नारद मुनि को निष्पाप कह रहे हैं। यदि भक्ति नारद मुनि की अपूर्ण हुई होती तो भगवान नारद मुनि को निष्पाप नहीं कहते। क्योंकि भक्ति पूर्ण है इसलिए नारद मुनि निष्पाप हैं, और यह भी हम समझ सकते हैं कि क्योंकि नारद मुनि निष्पाप हैं इसलिए उनकी भक्ति पूर्ण है। तो भगवान उसके आगे के श्लोक में कहते हैं, तुमने मुझे केवल एक बार देखा है और यह मेरे प्रति तुम्हारी इच्छा को उत्कट बनाने के लिए है, क्योंकि तुम जितना ही अधिक मेरे लिए लालायित होगे, उतना ही तुम समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो सकोगे। तो यहां पर भगवान अपना दर्शन देने के पश्चात जब अंतर्धान हो गए, तो नारद मुनि को और लालायित करने के लिए, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने भी रासलीला में अपने आप को अंतर्धान कर दिया था, ताकि वो गोपियों को और लालायित करें उनके लिए। इसे कहते हैं संभोग और विप्रलंब। कि आध्यात्मिक संसार में भगवान से संभोग से ज्यादा अधिक विप्रलंब में ज्यादा उनकी भावना में भक्त रहते हैं। जैसे विश्वनाथ चक्र ठाकुर वो अपनी टीका में कहते हैं कि किस प्रकार से विप्रलंब का जो भाव है वो अधिक तीव्र है भक्ति में संभोग के भाव की तुलना में। तो वो कहते हैं कि संभोग में जब भक्त भगवान के समक्ष रहता है, भगवान के सानिध्य में रहता है, तो वो केवल एक भगवान को देख रहा है। परंतु जब वही भक्त विप्रलंब में भाव में रहता है भगवान के, तो वो सब जगह भगवान को देखता है। इसलिए विप्रलंब भाव संभोग के भाव से अधिक तीव्र है। तो यहां पर भगवान ने अपना दर्शन दिया और फिर भगवान अदृश्य हो गए, तो नारद मुनि अब सब जगह भगवान को देख रहे थे। जैसे परीक्षित महाराज को भगवान ने दर्शन दिया जब परीक्षित महाराज अपने माता के गर्भ में थे, और परीक्षित महाराज इतना आकर्षित हुए भगवान को देखने के पश्चात कि जब परीक्षित महाराज जन्मे, तो जन्म के पश्चात परीक्षित महाराज ढूंढ रहे थे कि वो व्यक्ति कहां है जिसका दर्शन मैंने किया था मेरे माता के गर्भ में। तो बताया जाता है कि हस्तिनापुर में परीक्षित महाराज महल में वो घुटनों के बल रेंगते हुए लोगों की धोतियों को खींचते हुए देखते थे कि कहीं ये तो वो व्यक्ति नहीं जिसको मैंने गर्भ में देखा था। इसलिए परीक्षण किया करते थे सबका, ढूंढा करते थे कि कहां पर है वो कृष्ण जिनका दर्शन किया था। तो इसलिए उनका नाम हुआ परीक्षित, क्योंकि वो परीक्षण कर रहे थे, ढूंढ रहे थे वही भगवान को जिन्होंने अपना दर्शन परीक्षित को दिया था। और यहां पर भी ये विप्रलंब भाव में नारद मुनि को डाला है भगवान ने, तो नारद मुनि अब सब जगह भगवान को देख रहे हैं, इसलिए ये विप्रलंब भाव ज्यादा तीव्र है। और यहां पर भगवान ने केवल नारद मुनि को विप्रलंब भाव में न डाला, बल्कि नारद मुनि को और लालायित कर दिया उनके लिए। श्रील प्रभुपाद जी एक मॉर्निंग वॉक में उन्होंने देखा कि एक वो सरोवर था छोटा सा, और सरोवर में बहुत से बदक वो खेल रहे थे। तो श्रील प्रभुपाद जी ने अपने एक शिष्य से कहा कि तुम्हारे पास कुछ प्रसाद है। तो उनके पास कुछ प्रसाद था, तो जैसे श्रील प्रभुपाद जी वो प्रसाद थोड़ा सा फेंकना शुरू किए बदक के लिए, तो तुरंत सारे बदक आ गए प्रभुपाद के निकट, और वो जोर जोर से आवाज करने लगे, और उनमें से एक बदक था जिसको प्रभुपाद जी ज्यादा अधिक प्रसाद दे रहे थे। तो श्रील प्रभुपाद जी ने फिर अपने शिष्यों को पूछा कि इसे क्या समझते हो तुम? तो शिष्यों ने अलग अलग अपने अनुसार उन्होंने क्या समझा बताया। फिर श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये जो बदक जिसको मैं अधिक प्रसाद दिया हूं, ये इसलिए दिया हूं क्योंकि ये सबसे अधिक आवाज कर रहा था, ये सबसे अधिक लालायितता प्रसाद लेने के लिए। तो क्योंकि ये बदक सबसे ज्यादा लालायित था इसलिए इसे सबसे ज्यादा प्रसाद मिला। तो उसी प्रकार से हमारी भक्ति में जो सबसे अधिक लालायित रहेगा उसे भगवान का प्रसाद मिलेगा। और हमारा जो लौल्यम है वो हम दिखाते हैं केवल जब महाप्रसाद सामने आता है तब, परंतु प्रसाद की परिभाषा केवल वो जो खाने का प्रसाद नहीं, सब कुछ, भगवान का दर्शन भी प्रसाद है, भगवान का नाम प्रसाद है, भगवान का कीर्तन, भगवान का श्रवण प्रसाद है। उसके लिए हमें उसी प्रकार से लालायित होना चाहिए जैसे प्रभुपाद जी ने उदाहरण दिया इस बदक का। तो इसलिए जब हम हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं तो भगवान सुन रहे हैं हम सबका महामंत्र। तो जिसका महामंत्र सबसे अधिक लौल्य भाव में है उसका महामंत्र भगवान अधिक सुनेंगे। और इसका अर्थ ये नहीं कि हम जोर से चिल्ला चिल्ला के करें तो भगवान ज्यादा सुनेंगे, वो अंदर से तीव्रता होनी चाहिए, वो लौल्यम अंदर से आना चाहिए। हालांकि बाहरी दृष्टिकोण से भी जोर से नहीं होता, श्रवण कीर्तन में तो वहां पर भी आवाज निकालना तो दूर की बात है, दूसरी कुछ आवाज निकलती है ठोरने की कई बार। इस हद तक हमारा लौल्य हम दिखाते हैं भगवान के प्रति। तो इसलिए भगवान भी सोचते हैं ठीक है मैं भी सोने जाता हूं, यदि ये भक्त सो रहा है मेरे कीर्तन में, मेरे श्रवण में, मेरे जप में, तो मैं भी जाता हूं सोने। तो लौल्यम ये बहुत आवश्यक है। इसलिए रूप गोस्वामी भक्ति रसामर सिंधु में कहा है कि ये एकमात्र मूल्य है, ये लौल्यम ये एकमात्र मूल्य है जिससे हम भगवान को खरीद सकते हैं। अभी भगवान को कौन खरीद सकता है? किसी के अंदर क्षमता है कि भगवान को खरीद पाए? इस संसार में हम देखते हैं अलग अलग प्रकार के पदार्थ, यहां तक कि व्यक्तियों को भी खरीदा जाता है। जब कोई व्यक्ति किसी बॉस के लिए काम कर रहा है तो वो बॉस क्या है, वो मालिक क्या है, सेवक को खरीद लिया है। क्योंकि मैं पैसा दे रहा हूं इसलिए मेरी सेवा करो। तो सभी बिके हुए हैं, किसी न किसी के प्रति बिके हुए हैं सभी इस संसार में, या तो किसी मालिक के प्रति या किसी राष्ट्र के प्रति, या कोई व्यक्ति अपने बच्चे के प्रति, बच्चा अपने पिता के प्रति, पति अपनी पत्नी के प्रति, पत्नी अपने पति के प्रति ना? परंतु भगवान के लिए कोई बिकना नहीं चाहता। यहां पर रूप गोस्वामी कहते हैं कि वो तो दूर की बात है, यहां तक कि एक भक्त इतना प्रगत बन जाता है कि वो भगवान को खरीद सकता है। इसका अर्थ क्या है कि भगवान बिक जाते हैं, भगवान बिक जाते हैं अपने भक्त के प्रति। और वो मूल्य क्या है जिस मूल्य से भक्त खरीद लेता है भगवान को? लौल्यम, ये उत्साह। इस उत्साह से वो खरीद लेता है भगवान को। तो यहां पर नारद मुनि के विषय में वो कह रहे हैं कि आपकी भक्ति अविपक्व है, अभी पक्की नहीं हुई है। तो सोचिए नारद मुनि के विषय में भगवान कह रहे हैं। तो हम यदि अपने विषय में सोचें तो सोचना भी प्रारंभ नहीं कर सकते कि कुछ होना चाहिए सोचने के लिए। हमारी भक्ति के विषय में सोचने के लिए कुछ भक्ति होनी चाहिए, तभी तो कुछ सोचेंगे। जैसे एक मटका, एक मटके को जब परिपक्व किया जाता है तो कैसे किया जाता है? भट्टी में उसे डाला जाता है। तो जब मटके को भट्टी में डाला जाता है तो देखिए वो मटका जो आगे चलकर जल को शीतल करने वाला है, वो शीतल करने से पहले स्वयं वो मटके को कहां से गुजरना होता है? तप्त अग्नि से। तप्त अग्नि से उस मटके को गुजरना होता है, तब जाकर आगे चलकर वो मटका जल को शीतल करता है। तो उसी प्रकार से जब तक हम भक्ति में ये तीव्रता नहीं लाएंगे, जब तक भक्ति की भट्टी में नहीं जाएंगे, तब तक हमारी भक्ति भगवान के लिए शीतल नहीं बन पाएगी। इसलिए ये जो नियम है और ये जो हरे कृष्ण महामंत्र का नियम है और जो चार नियम है, ये सब वास्तविक रूप में जितना कलमश हमारे अंदर है उतना अधिक ये नियम भट्टी के समान प्रतीत होते हैं, है कि नहीं? कि मटका जितना कच्चा है उतना अधिक उसे भट्टी में अधिक समय तक रहना पड़ेगा, है कि नहीं? तो उसी प्रकार से जितने कलमश हैं हमारे अंदर उतनी हमारी भक्ति कच्ची है। और इसका अर्थ क्या है कि उतना अधिक और उतने समय तक हमें भक्ति के इस अग्नि में तपना होगा। इसीलिए हम ज्यादातर तो ये सुनते हैं और कहते हैं कि भक्ति तो बहुत सरल है, चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी, केवल हरे कृष्णा जप कीजिए और प्रसन्न हो जाइए। लेक्चर में बोलने के लिए अच्छा लगता है ना, परंतु जब हरे कृष्णा शुरू करते हैं तो प्रसन्नता इतनी दिखती नहीं हमारे अंदर। तो हालांकि भक्ति बहुत सरल है, भक्ति में कोई कठिनाई नहीं है, कठिनाई किसमें है? हमारे अंदर। हम सरल नहीं है, भक्ति सरल है परंतु हम सरल नहीं है। हमारे अंदर इतने ज्यादा जटिल चीजें हैं, ये इच्छाएं, ये वासनाएं और ये आसक्तियां इतनी ज्यादा जटिल हैं, उसके वजह से भक्ति जटिल प्रतीत होती है। जैसे एक भक्त, वो उनके विषय में हम सुन रहे थे, तो भगवान के ऊपर क्रोधित थे। दीक्षित भक्त हैं हमारे, भगवान के ऊपर क्रोधित थे। क्यों क्रोधित थे? कि भगवान आपने हमें ये स्वतंत्रता क्यों दी कि यदि हमें ये स्व इच्छा, स्वतंत्र इच्छा यदि नहीं दी होती, यदि डंडा लेकर कहा होता कि भौतिक संसार में नहीं जाना, इधर ही रहना है आध्यात्मिक संसार, तो कितना सरल हो जाता हमारा जीवन। ये आपने हमें अनुमति दी यहां पर आने के लिए इस भौतिक संसार में, और अब इस भौतिक संसार में आने के पश्चात हम देखते हैं कि कितना कठिन हो गया है इससे निकलना। तो एक दृष्टिकोण से तो हम कह सकते हैं कि हमें नहीं चाहिए स्वतंत्रता, हमें बद्ध रहना है भगवान के अधीन। हालांकि हम बद्ध हैं, केवल अंतर यही है कि जो शुद्ध भक्त हैं वो बद्ध हैं भगवान के योग माया में, और जो अभक्त हैं वो बद्ध हैं भगवान की महामाया में। तो एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो दोनों, जो योग माया और महामाया, वो दोनों सभी जीवात्माओं को भगवान कृष्ण के निकट ला रही है। तो योग माया भगवान के निकट कैसे ला रही है? भक्ति को दिखाकर। और महामाया भगवान के निकट कैसे ला रही है? हमें पीछे से लात मारकर। तो पीछे से जैसे गधे को चलाया जाता है, तो गधा जब चलता नहीं तो उसके पीछे से मारना पड़ता है, तो जब जानवर कब चल जब चलता नहीं तो पीछे जब मारते हैं तो तब वो चलना शुरू करता है। एक और तरीका है गधे को चलाने के लिए कि उसके सामने गाजर लटकाई जाए। जब उसके सामने गाजर लटका देते हैं या घास लटका देते हैं तो गधा जब गाजर को घास को देखता है तो तुरंत उसे प्राप्त करने के लिए आगे चलता है। तो वैसे ही आध्यात्मिक संसार उस गाजर के समान है जो हमें आकर्षित करते हैं उधर जाने के लिए। परंतु कई जीवात्मा ऐसे गधे होते हैं कि चाहे कितनी भी गाजर लटका दो सामने, चाहे थोक के भाव में किलो के भाव में गाजर सामने लटका दो या गाजर का हलवा भी लटका दो, परंतु फिर भी वो हिलेंगे नहीं, टस से मस नहीं होंगे वहां से। तो ऐसे गधों को हिलाने के लिए फिर महामाया पीछे से लाठी मारती है। श्रील प्रभुपाद जी कहते थे कि संसार में लोग समझते हैं कि मैं माया के अधीन रहूंगा तो ज्यादा स्वतंत्र रहूंगा। तो प्रभुपाद जी कहते थे एक हिंदी मुहावरा, सच्चा बोले तो मारे लट्ठा, झूठा जगत झुरा है। कि जब कोई व्यक्ति सच बात कहता है तो उसे लाठी पड़ती है इस संसार की, और जो झूठा व्यक्ति होता है सब लोग उसकी आराधना करते हैं, सब लोग कहते हैं हाँ ये व्यक्ति सच कह रहा है। जैसे ये टीवी में जो कार्यक्रम आते हैं सब झूठे कार्यक्रम है, कोई सत्य बात नहीं उसके अंदर, परंतु लोग उसे सत्य मानते हैं। हाँ कि देखो कितना अच्छा कार्यक्रम है, कितनी अच्छी कहानी है। और कई बार वो कहानी जो दिखा रहे हैं वो हम सब की कहानी इस भौतिक संसार में, केवल वो वहां पर पर्दे पर हैं और वो अपने आप को दर्शा रहे हैं, बल्कि ये सब हमारी ही कहानी वहां पर दिखाई जा रही है और हम प्रसन्न होते हैं उसे देखकर कि कितनी अच्छी कहानी है, उस बिचारे के साथ देखो कैसा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अरे बिचारा हम हैं। वो जो व्यक्ति पैसा काट कर उसे देख रहा है या किसी सिनेमा में जाता है और देखता है कि कोई व्यक्ति मारा गया है, कुछ दुर्घटना हो गई है, दुख है किसी के परिवार में, तो एक कर कहता है बेचारे के जीवन में देखो कितनी कठिनाई आई, पेपर में पढ़ते हैं। परंतु माया ये सब हमें दिखा रही है इसलिए कि ये सब कुछ हमारे अंदर हो रहा है हमारे जीवन में, या यदि अभी दिखाई नहीं दे रहा तो कुछ समय रुको, दिखाई भी दे जाएगा हमारे स्वयं के जीवन में, तब फिर कोई और कहेगा बेचारे के जीवन में क्या हुआ। तो इस संसार में केवल एक दूसरे को लोग बेचारा कह रहे हैं, तो एक दूसरे को बेचारा कहने से हम अपने आप को बचा नहीं पाएंगे इस माया की लाठी से। तो कई बार भक्ति में भी जब हमको परिपक्व कराना होता है भगवान को, तो भगवान माया को थोड़ा कहते हैं कि ये थोड़ा हिल नहीं रहा, थोड़ा इसको हिलाओ। तो हमें थोड़ा हिलाने के लिए भगवान थोड़ा माया को भेजते हैं कि थोड़ा हिलाओ इनको। जैसे कई बार जप में जब नींद आती तो हिलाना पड़ता है ना, तो हिलाना पड़ता है तब जाकर कुछ समय के लिए पता लगता है अरे हाँ माला है हाथ में। पता नहीं वो माला का कुछ कनेक्शन है हमारे नींद से, वो कुछ बटन की जैसे है कि जैसे ही वो हाथ माला झोली में अंदर गया तो बटन ऑन हो जाता है, हमारी निद्रा देवी का बटन ऑन हो जाता है। तो वहां पर हाथ गया ये सब आंखें बंद होना शुरू। तो कई बार देखते हैं कि भक्ति में भी भगवान हमें परिपक्व बनाने के लिए माया को थोड़ा यहां वहां से भेजते रहते हैं लाठी मारने के लिए। तो हमें समझना चाहिए कि ये जो माया की लाठी है ये हमें उस गाजर के निकट ले जाने के लिए है। कि यदि हम स्वयं भाव से गाजर के प्रति आकर्षित नहीं हो रहे तो पीछे से थोड़ी लाठी जब मारी जाती है तो गधा ऊपर देखता है, तो फिर हाँ ये गाजर लगता है मेरे को खिलाने के लिए पीछे से लाठी मारी जा रही, तब फिर एक दो कदम आगे बढ़ाता है उसे लेने के लिए। तो कई बार भक्ति में ये ऐसा हो जाता है कि जब लाठी पड़ती है तो विश्वास कम आ जाता है भगवान के ऊपर कि अरे भाई ये मैंने ये हरे कृष्ण आंदोलन में मैं आया था और मैं सबसे पहला जब लेक्चर अटेंड किया तो कहा था कि चैंट हरे कृष्ण एंड बी हैप्पी, और उस समय सभी मुझे महाप्रसाद ला ला कर दे रहे थे, मुझे अलग सीट पे बिठाते थे, सारे हार मेरे लिए होते थे और मेरे साथ इतना समय बिताते थे लोग, यहां तक कि मेरे लिए प्लेट बना कर लाते थे, परंतु अभी तो कोई पूछता भी नहीं, अभी तो कहते बाल्टी हाथ में लो प्लेट नहीं। पहले प्लेट हाथ में देते थे, अब बाल्टी हाथ में दे रहे हैं। तो ये लाठी थोड़ा सहन नहीं हो रही। परंतु भगवान हमें परिपक्व बना रहे हैं इसमें, ये समझना चाहिए। जैसे एक व्यक्ति एक बार वो एक जहाज से जा रहा था और उसका जो जहाज था वो डूबने की स्थिति में था, तो कैसे तो ये व्यक्ति जहाज से कूद कर तैरने लगा और एक टापू पर पहुंचा, आइलैंड, और वहां पर देखा कि एक भी मनुष्य नहीं जी रहा, कोई नहीं, वहां पर केवल जंगल ही जंगल, और वो जहाज तो डूब गया, ये अकेला अब यहां पर क्या करे, यहां पर कुछ खाने के लिए नहीं, कुछ करने के लिए नहीं, किसी के साथ संग करने के लिए कुछ नहीं, और यहां से दूर दूर तक देखता है तो केवल समुद्र ही समुद्र, चारों तरफ समुद्र ही समुद्र। तो ये व्यक्ति सोचा कि मैं अब यहां पर ही अपना बसेरा बनाता हूं, क्योंकि जो कुछ अब यहां पर मिलेगा उसी के सहारे जीना है। तो उसने सोचा कि मैंने कभी भगवान की आराधना नहीं की, तो यहां पर अभी और कोई तो मेरी बात सुनेगा नहीं शायद, ये हो सकता है कि भगवान मेरी आवाज सुने। तो रोज वो घंटों भगवान से प्रार्थना करता, और क्या प्रार्थना करता, कैसे तो मुझे यहां से निकालो, इस टापू से निकालो बाहर। तो बहुत महीने बीत गए वहां पर रहते रहते, अब उसने अपने लिए एक छोटा सा झोपड़ा बना लिया, यहां घास फूस लाकर लकड़ी लाकर इकट्ठा कर अपने लिए एक छोटा सा झोपड़ा बनाया उसने, और रोज वो समुद्र के तट पर जाकर दूर दूर तक देखता, कोई जहाज आ रहा है दिख रहा है, कोई इस तरफ आ रहा है, और प्रार्थना करता घंटों घंटों भगवान से। तो एक दिन वो प्रार्थना जब कर रहा था तो तुरंत घने बादल छा गए, तो उसे लगा कुछ तो हो रहा है, लगता है घने बादल आ गए और मेरी प्रार्थना के मध्य में आ रहे हैं, तो हो सकता है कि कुछ तो होगा शायद। तो घने बादल आए और बिजली कड़कने लगी, तो थोड़ा ये डर गया, भाई एक तो मेरा छोटा सा झोपड़ा है, कैसे तो उसे मैंने एक तरफ बना के रखा है, वही एक सहारा है मेरा रहने के लिए, और यहां पर अभी बिजली कड़क रही है, मैं प्रार्थना कर रहा हूं भगवान से मुझे यहां से मुक्त करने के लिए और बिजली बिजली भेज रहे हैं। तो ऐसा हुआ कि वो जब प्रार्थना कर रहा था बिजली कड़क रही थी, तो बिजली नीचे तक आई और उसने देखा उसके आंखों के सामने वो बिजली उसके जो झोपड़े के ऊपर लगी और सारा झोपड़ा जलकर भस्म हो गया। अब देखिए, एक ही सहारा उसका वो झोपड़ा, और उसने सोचा कि ये प्रार्थना मैंने लगता है गलत व्यक्ति की, कि भगवान की प्रार्थना जो करता है उसे ये मिलता है कि मेरा झोपड़ा जला दिया। तो अब कोसने लगा भगवान को, कह रहे मैं यहां पर मैंने क्या गलती की, कौन सा मैंने पाप किया, अपने आप को मैं बचा रहा हूं, जीने के लिए इतना प्रयास कर रहा हूं, और इसके ऊपर इतनी रिश्वत आपको दे रहा हूं, इतनी प्रार्थना रोज कर रहा हूं, और उसके बावजूद ये बिजली कड़काकर एकमात्र सहारा मेरा जला दिया। तो वो देखता है कि तुरंत उसी समय एक जहाज इसके टापू के तरफ बढ़ता हुआ उसे दिखा। तो जैसे ही उसने जहाज दिखा तो हाथ यहां वहां ऊपर करने लगा, अब भगवान को भूल गया, वो झोपड़े को भूल गया, जहाज आ रहा है, अब तो बस मुक्ति के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। तो जहाज जैसे ही वहां पर उस तट पर पहुंचा तो तुरंत ये भागकर जहाज में कूदा, और जहाज का वो जो कप्तान था उस कप्तान को कहा कि बहुत बहुत धन्यवाद कि तुम अपना जहाज को यहां पर लाए और मुझे यहां से बचाया, इतने महीने हो गए मैं यहां पे सड़ रहा हूं, कुछ नहीं यहां पर, और वो भगवान से भी इतनी प्रार्थना की, कुछ नहीं किया। तो वो कप्तान लगी मैं विशेष रूप से यहां पर देखने आया था कि शायद यहां पर कोई रह रहा है, इसलिए मैं अपना जहाज, नहीं तो मेरा जहाज यहां से नहीं गुजरता कभी। तो इस व्यक्ति ने पूछा कि तुम्हें कैसे पता लगा कि मैं यहां पर हूं? तो उस जहाज के कप्तान ने कहा कि दूर से मैं जब अपना जहाज को उस तरफ से आगे ले जा रहा था तो मैंने देखा अपने दूरबीन से कि इस टापू से धुआं निकल रहा है। तो मैंने देखा कि धुआं निकल रहा है, मतलब कोई व्यक्ति यहां पर हो सकता है, क्योंकि धुआं निकल रहा है कैसे, आग के कारण, और आग किसी व्यक्ति ने जलाई होगी यहां पर, तो किसी व्यक्ति ने आग जलाई जिसके कारण धुआं निकल रहा है, मतलब यहां पर कोई रह रहा है, इसलिए वो उस धुएं को देखते हुए मैं अपने जहाज को यहां पर लाया। तो उस कप्तान ने इस व्यक्ति को पूछा तुम कुछ आग वगैरह जला रहे थे क्या? तब उसे ध्यान में आया कि वो आग कहां से आई, उस बिजली से आई, वो बिजली कहां से आई, उस बादल से आई, और वो बादल कब एक साथ आए, जब मैं प्रार्थना कर रहा था, तो मेरी प्रार्थना के वजह से बादल आए, बादल से बिजली, बिजली से अग्नि, अग्नि से धुआं, धुआं से जहाज। तब फिर तो वो दंडवत करने गए, प्रार्थना करने लगा भगवान को कि वास्तविक रूप में आपको, आपके जो बचाने के तरीके हैं वो मैं मान गया, कि इस प्रकार से आप अपने भक्त को बचाते हो। तो देखिए, इस व्यक्ति को उस समय दिखाई नहीं दे रहा था कि भगवान का हाथ कहां कहां है उसे सहायता करने के लिए, उसे क्या दिखाई दे रहा था, केवल बादल, बिजली, अग्नि, धुआं, उसे वो जहाज नहीं दिखाई दे रहा था उसके अंदर, परंतु भगवान अंततः उसका जहाज तक देख रहे थे और कैसे इसको वहां से बचाना है। तो उसी प्रकार से हमारी साधना भक्ति में जब हम जब शुरू करते हैं, चार नियम पालन करना शुरू करते हैं, तो कई बार हमारी भी प्रार्थनाओं में हमें केवल बादल, बिजली, अग्नि, धुआं यही दिखाई देता है कि मेरी भक्ति में केवल मुझे धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा है, परंतु यहां से निकल, ये जो टापू है, ये जो भौतिक संसार जिसमें हम फंसे हुए हैं और हम अपना अपना झोपड़ा बनाए हुए हैं, और इतने आसक्त हम हो जाते हैं कि भाई इसी के सहारे मैं भगवान की भक्ति कर रहा हूं, और कई बार भगवान उसी झोपड़े को जला देते हैं कि जिसको हमने इतनी मेहनत से बना कर रखा और सोच रहे हैं कि इस झोपड़े के सहारे में भक्ति करूंगा, और जब भगवान उस झोपड़े को जला देते हैं तब मन में संशय आना शुरू हो जाता है कि ये भगवान है कि नहीं। हालांकि इनको घनश्याम कहा जाता है, घनश्याम का अर्थ क्या है, जो घने बादल के समान जिनका वर्ण है, परंतु ये घना बादल बहुत डेंजर है, ये बिजली फेंकता है। तो ये घनश्याम जो है ये बिजली फेंकते हैं अक्सर हमारे ऊपर। जैसे एक बार राधानाथ महाराज बता रहे थे कि वो एक आश्रम में गए जो जहां पर भगवान शिव जी की आराधना की जाती थी, तो वहां पर उन्होंने उस आश्रम में देखा कि सब कुछ एकदम पक्का था, सब सुविधाएं और किसी प्रकार की कोई तकलीफ किसी को नहीं। तो उन्होंने जो प्रमुख थे मठाधीश इस मठ के, उनको पूछा कि ऐसे कैसे है कि आपके आश्रम में कोई प्रकार की तकलीफ नहीं, कोई धन की तकलीफ नहीं, व्यक्तियों की तकलीफ नहीं, आपस में किसी का कोई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं। तो उसने कहा कि क्योंकि हम शिवजी की आराधना करते हैं तो वो सब कुछ प्रदान करते हैं, जो भी सुविधाएं हमारे आराम के लिए, आराम की सुविधाएं हमें वो प्रदान करते हैं। और ये प्रश्न आप इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आप कृष्ण के भक्त हैं, मैं जानता हूं। और जो कृष्ण के भक्त हैं उनके जीवन में आराम नहीं। तो क्योंकि ये सत्य घटना है, उन्होंने कहा कि क्योंकि मुझे अपने जीवन में केवल आराम चाहिए था और मेरे जो अनुयायी मेरे शिष्य उनको भी आराम चाहिए था, इसलिए हमने कृष्ण की आराधना नहीं चुनी। क्योंकि हम जानते हैं कि जो कृष्ण की आराधना शुरू करता है तद धनम शनै हरिष्य तद धनम शनै, वो हरि उनका नाम है, वो सब कुछ हरना शुरू करते हैं, उसका उसका झोपड़ा और जो कुछ वो यहां पर पकड़ना चाहता है। परंतु वो इसलिए हरते हैं, उस व्यक्ति ने कहा, वो इसलिए हरते हैं ताकि भगवान स्वयं अपने आप को उसे दे दे। तो हम जब, वो कह रहा था कि देवी देवताओं की आराधना करते हैं तो देवी देवता हमें देते हैं जो हम मांगते हैं, परंतु वो अपने आप को कभी नहीं देते। वो अपना जो भी स्वर्ग लोक में उनका जो झोपड़ा है वो वहीं पर उसमें रहते हैं, उसमें भोग विलास करते हैं, और हमें जो चाहिए, हमें जो इच्छा है वो हमें प्रदान करते रहते हैं। परंतु आपके भगवान श्री कृष्ण ऐसे हैं कि वो आपका सब कुछ अलग कर लेंगे, यहां वहां बिखेर देंगे, आपको उससे बिखेर देंगे, अलग कर देंगे। क्यों? ताकि वो अपने आप को दे सके आपको। और उसने कहा कि क्योंकि मेरे अंदर एक क्षमता नहीं कि मैं इसे झेल पाऊं, इसलिए कृष्ण की आराधना करने की हिम्मत अभी तक मुझ में नहीं आई है। तो बहुत से लोग जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के पास जाओगे तो फिर घने बादल आएंगे, बिजली आएगी और झोपड़ा जलेगा, परंतु जब तक हमें विश्वास नहीं कि झोपड़ा जलने के पश्चात जहाज भी आएगा, तब तक वो जो भक्ति है हमारी, वो भक्ति बहुत कठिन महसूस होती है, वो भक्ति का अनुभव बहुत ज्यादा कठिन होता है। इसलिए यदि हमें अपनी भक्ति में परिपक्व होना है, जैसे यहां पर भगवान नारद मुनि को कह रहे हैं, सारे कलमशों से दूर होना है हमें, तो हमें ये जो इस संसार का ये जो 10 पैसे का इंद्रिय भोग है, ये उदाहरण दिया गया है कि यदि हमारे हाथ में 10 पैसा है और उसका भी मूल्य है, परंतु यदि कोई हमें 10 करोड़ लाकर दे परंतु कहे कि वो 10 पैसा छोड़ो पहले, तो यहां पर 10 करोड़ रखा हुआ है, हमारे हथेली पर 10 पैसा है। तो व्यक्ति कहता है ये 10 करोड़ तुम्हारा, मेरा? हम कहते हैं लेकिन एक शर्त, ये 10 पैसा पहले फेंको, वो 10 करोड़ तुम्हारा। परंतु हमारी चेतना क्या रहती है कि क्यों ना मैं वो 10 करोड़ और ये 10 पैसा भी रखूं। तो वो 10 पैसा की तुलना की गई है इस भौतिक संसार के इंद्रिय भोग से, 10 पैसे का इंद्रिय भोग इस संसार का। और भगवान का जो प्रेम है, कृष्ण प्रेम, उसकी तुलना उस 10 करोड़ से की गई है। तो ज्यादातर साधना भक्ति में हम प्रयास और अपने प्रयोजन इस प्रकार से बनाते हैं कि दोनों यदि हो, 10 पैसा भी रहे और 10 करोड़ भी मिले। क्योंकि भगवान तो सबके स्रोत हैं, भगवान 10 पैसे के भी स्रोत हैं और भगवान 10 करोड़ के भी स्रोत हैं। तो कई बार साधना भक्ति में हम यहां वहां एडजस्टमेंट करके प्रयास करना चाहते हैं कि वो इंद्रिय भोग भी चलता रहे और कृष्ण प्रेम भी प्राप्त होता रहे। नहीं, जब भगवान ने बांसुरी बजाई शरद पूर्णिमा के रात को, तो गोपियों ने सब कुछ त्याग कर वो आई। केवल कुछ 10 पैसा त्याग कर नहीं आई वो, सब कुछ छोड़कर आई वो। और बताया गया है, आचार्य बताते हैं कि जब भगवान अपनी बांसुरी बजा रहे थे तो ये मध्य रात्रि का समय था, और गोपियां जो कि इतने चरित्रशील गोपियां, उन्होंने अपना घर त्यागा। और ऐसा नहीं था कि सभी गोपियों को यह पता लग गया कि बाकी सारी गोपियां भी आ रही हैं। भगवान ने जब अपनी बांसुरी बजाई तो हर एक गोपी ने केवल अपना ही नाम सुना उस बांसुरी की ध्वनि में, इंडिविजुअल एसएमएस गया। तो हर एक गोपी ने केवल जैसे वो ईमेल में होता है कि आप बल्क मेल करते हैं किसी को, परंतु उसमें वो क्या कहते हैं उसको, ब्लाइंड मेल, ब्लाइंड कॉपी, कि उस व्यक्ति को लगता है कि केवल उसे वो मेल मिला है, क्योंकि बाकी जिन जिन को एड्रेस किया गया है वो उसे दिखाई नहीं देता, परंतु वो बहुत लोगों को गया है वो मेल। तो वैसे भगवान जब अपनी बांसुरी बजा रहे थे तो सारी गोपियों के लिए बजा रहे थे, परंतु हर गोपी को ऐसा लगा कि आज रात भगवान केवल मुझे बुला रहे हैं। तो हर एक गोपी ने ये इंडिविजुअल रिस्क लिया अपने घर को छोड़ने का। अभी जब हम कार्यक्रम के लिए आते हैं, यात्रा के लिए जाते हैं, तो पता है कि कितने लोग रजिस्टर कर रहे हैं, 2000 लोग रजिस्टर कर रहे हैं, तो कोई तकलीफ नहीं होगी, 2000 लोग हैं तो इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। परंतु यदि आपको ये पता लग जाए कि यात्रा में केवल आप अकेले हैं, या सत्संग कार्यक्रम में आप अकेले बैठे हैं, तो जो वक्ता है और आप अकेले श्रोता, तो कोई चांस नहीं सोने का। क्योंकि जब बहुत से लोग बैठे रहते हैं तो वक्ता जो है इधर उधर देखेगा, तो मैं थोड़ा यहां पे एक अपना डुलकी मार लूंगा, परंतु यदि मैं अकेला बैठा हूं तो मेरी तरफ ही देखता रहेगा, तो कोई चांस नहीं सोने का। तो उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण व्यक्तिगत उनके नाम को पुकार रहे थे अपनी बांसुरी की ध्वनि से। तो उन्होंने व्यक्तिगत रिस्क लिया बाहर आकर, और रिस्क क्या था, फिर से अब अनुमति नहीं घर पर, अब फिर से घर पर नहीं, सारे दरवाजे बंद, ताला लग गया कि अब फिर से अनुमति नहीं। और वहां पर पहुंचने के पश्चात भी देखिए, ऐसा नहीं कि भगवान ये बिजलियां केवल जो नौसिखिया भक्त हैं, हम लोग जो इतना प्रयास कर रहे हैं, केवल उन्हीं के ऊपर, यहां पर ये गोपियां शुद्ध भक्त, इनके ऊपर इस प्रकार की बिजली फेंक रहे हैं भगवान, कि ये जब वहां पर आई भगवान के समक्ष सब कुछ त्याग कर शरणागत होने के लिए, तो भगवान क्या कहते हैं, यहां पर कैसे आना हुआ? इतना सब कुछ करने के पश्चात भगवान गोपियों को कहते हैं कि ये इस समय रात के 12 बजे यहां कैसे? और गोपियां भगवान को कह रही हैं कि अरे भाई, बुलाया आपने, ये इतनी शक्ति आपने डाली है आपके बांसुरी की ध्वनि में, और अभी आप ही पूछ रहे हैं कि क्यों हम यहां पर आई हैं। जैसे ये ऐसा हो गया कि जैसे प्रसाद का समय है और प्लेट लगा दिया है और प्रसाद प्लेट में डाल दिया है और सभी एक दूसरे से पूछ रहे हैं अब क्या करना है, अभी करना क्या है, खाओ। तो उसी प्रकार से भगवान ने बांसुरी बजाई शरद पूर्णिमा के रात को वंशीवट पर, और वहां पर सब गोपियों को बुलाया, और सब आने के पश्चात अब भगवान पूछते हैं अब क्या करना है। तो गोपियां, और इतना ही नहीं क्या करना है, भगवान गोपियों को इस प्रकार से कहने लगे कि भाई क्यों आई हो तुम लोग, ये जंगल इतना डरावना है, यहां पर इतने खूंखार जानवर हैं, और इतने सब चरित्रशील तुम स्त्रियां हो, पत्नियां हो अपने पतियों की, छोड़कर यहां पर क्यों? भगवान यहां तक कह रहे थे कि जंगल को देखने आई हूं, जंगल को देखने का ये समय है रात के 12 बजे। तो भगवान अलग अलग प्रकार के तर्क वितर्क दे रहे थे, और गोपियां वहां पर चुप खड़ी थी, और उन्होंने कह दिया कि जो कुछ आप कहो, अब हम सब कुछ छोड़कर आ गए हैं, वापस नहीं जाना। घर न जाइबो वन प्रवेशीबो, भक्ति विनोद ठाकुर अपने भजन में कहते हैं कि अब घर नहीं जाना, अब वन में हमने प्रवेश कर लिया है, और वास्तविक रूप में वन में नहीं बल्कि भगवान के मन में उन्होंने प्रवेश कर लिया था। तो ये जो 10 पैसे का इंद्रिय सुख है हमारा, कि एक जो लोलुप व्यक्ति रहता है, इंद्रिय भोग से लोलुप व्यक्ति, वो व्यक्ति ये नहीं देखता कि इंद्रिय भोग का मूल्य कितना है, वो 10 पैसे का इंद्रिय भोग उसके लिए वो इतना कठिन परिश्रम करेगा, यदि उसका परिश्रम देखा जाए तो परिश्रम देखने से ऐसा लगेगा कि मानो करोड़ों रुपया कमा रहा होगा ये व्यक्ति। हम बंबई में हम देखते इतना कठोर परिश्रम लोग करते हैं, तो यदि किसी व्यक्ति को पता नहीं कि ये किस लिए परिश्रम कर रहा है, तो उसे लगेगा भाई ये तो कोई करोड़पति होगा शायद, इतना परिश्रम कर रहा है, तो इतने परिश्रम के पश्चात इसे बहुत कुछ मिलना चाहिए। फिर से गधे का उदाहरण, इतना परिश्रम करता है वो गधा, वो धोबी इतना सब कुछ लाद देता है वो गधे के ऊपर, और वो गधा वो धोबी का इतना कपड़ा ले जाता है वहां पर धोबी घाट पर उसे धुलाने के लिए, और उसमें से एक भी कपड़ा उस गधे को नहीं मिलता। ऐसा नहीं कि इतना सारा कपड़ा लादा है तो चलो एक कपड़ा इस गधे को आज दे दें, दिवाली का समय है कुछ, इतना वो कठोर परिश्रम कर रहा है तो एक कपड़ा गधे के लिए, एक जींस पैंट गधे के लिए, उसको एक कपड़ा नहीं मिलता गधे को, परंतु फिर भी सारे कपड़े लाद लाद कर ले जाता है, वापस लाद लाद कर ले आता है, और अंत में मिलता क्या है, थोड़ा सा घास। तो ऐसे ही चर्चा हो रही थी दो गधों में, तो एक गधा जो गांव का गधा था वो शहर गया, वो शहर के गधे ने उसको बुलाया, स्पॉन्सर किया, आ जाओ कि थोड़ा शहर शहर की जो चकाचौन है उसे देखो आकर। तो गांव का गधा शहर जाता है और वहां पर देखता है कि ये जो शहर का गधा है गधे की तरह परिश्रम कर रहा है। तो ये गांव का गधा देखता है इस दिन भर ऐसे गधे की तरह परिश्रम कर रहा है, और अंत में उसको थोड़ा सा घास मिलता है केवल। तो ये गांव का गधा कहता है, अरे तुम गधे की तरह परिश्रम कर रहे हो केवल कुछ घास के लिए, तुम सचमुच में गधे हो, क्योंकि गांव में सब जगह घास ही घास है, और यदि इस घास के लिए इतना परिश्रम है, उधर तो घास ही घास है और इतना घास, और मुझे कुछ परिश्रम करना नहीं पड़ता। तो ये शहर का गधा कहता है, नहीं तुम्हें पता नहीं, केवल घास नहीं है, मैं बताता हूं तुम्हें। तो उसे कोने में ले जाता है, उसे कोने में ले जाकर कहता है कि देखो मैं तुम्हें ये गुह्य बात बता रहा हूं, ये गुह्य ज्ञान केवल तुम्हें दे रहा हूं मैं, क्योंकि तुम मेरे मित्र हो। जैसे भगवान ने अर्जुन को कहा कि केवल तुम्हें मैं ये गुह्य ज्ञान दे रहा हूं क्योंकि तुम मेरे सखा हो, सखा चेती। तो उसी प्रकार से इस गधे ने, शहर के गधे ने गांव के गधे को कहा कि केवल तुम्हें मैं गुह्य बात बताता हूं, किसी को कहना मत। तो वो कहता है क्या गुह्य बात है? उसने कहा कि ऐसा हुआ पिछले हफ्ते कि जो मेरा मालिक है ना, ये मेरा मालिक वो अपनी बेटी को डांट रहा था। उसकी बेटी ने कुछ गलती की थी और अपनी बेटी को डांटते हुए उसने कहा, और मैंने सुना दोनों कानों से, दोनों कान कितने बड़े हैं देखो गधे के, तो दोनों कानों से मैंने सुना, वो जब अपनी बेटी को डांट रहा था तो उसने अपनी बेटी को कहा, फिर से यदि ये गलती की तो तुम्हारी शादी इस गधे से कर दूंगा। और मुझे मालूम है कि इसकी बेटी ये गलती करती है बार बार, तो इसकी बेटी ये गलती जरूर करने वाली है और मेरा अनाउंसमेंट होने वाला है। तो इसलिए ये गुह्य बात है, ये घास वास तो मिलता रहता है। तो इस प्रकार से इस भौतिक संसार में जो लोग इंद्रिय भोग के प्रति इतनी आशा रखे हैं, जैसे यदि उस गधे की आशा हम देखें कि कितनी आशा रखा है वो गधा, तो हम लोग कितना हंस रहे हैं देखिए इस गधे के ऊपर और इसकी आशा के ऊपर। उसी प्रकार से भगवान हमारे ऊपर हंसते हैं, जैसे हम उस गधे के ऊपर हंस रहे हैं, भगवान हमारे ऊपर हंसते हैं जब हम इतनी आशा लेकर जीते हैं इस संसार में कि हाँ मेरा यहां पर घर बन जाएगा, मेरी वो पत्नी होगी, फिर मेरे इतने बच्चे होंगे, फिर वो सब इंजीनियर बनेंगे, फिर वो उसमें से एक डॉक्टर बन सकता है। हाँ। और यदि इंजीनियर डॉक्टर में से एक अगर ब्रह्मचारी बन गया तो फिर तो बाप रे, कि ये जो ये बिजली सहन नहीं होगी। तो इतनी सारी हमारी आशाएं होती हैं कि अब मैं इतना पैसा कमाऊंगा, और इतना पैसा मेरा अभी ऑलरेडी इकट्ठा हो गया है बैंक में, उसका इंटरेस्ट आ रहा है, और उसमें मैं जीरो बढ़ाता रहूंगा उसके, और मेरे इतने सारे प्लान हैं। वो सारी जो हमारी आशाएं हैं वो उस गधे की समान है, जैसे वो गधे की आशा थी इतनी। तो इसलिए ये जो 10 पैसे का इंद्रिय सुख है, इसके लिए हम इतना कठोर परिश्रम करते हैं। इसीलिए आचार्य कहते हैं कि यही परिश्रम यदि हम भगवान के लिए करें तो भगवान हमें अवश्य प्राप्त हो जाएंगे, और भगवान के लिए इतना कठोर परिश्रम करने की भी आवश्यकता नहीं। केवल भगवान ने कह दिया, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, कि केवल अपने मन में मेरे विषय में सोचो। तो अर्जुन मान लो ये पूछे कि भाई आपके विषय में सोचना, मैं पहले ही बता दिया कि मन मेरा इतना चंचल है, तो भगवान कहते हैं कि केवल ठीक है मेरी मेरे विषय में भावना रखो, कुछ अच्छी भावना रखो मेरे विषय, तो उसी को भी मैं भक्त मानूंगा। मन मना भव मद भक्त, उसको भी मैं अपना भक्त मानता हूं जो मेरे विषय में कुछ भावना रखता। तो यदि अर्जुन कहे कि नहीं वो भावना भी रखना और आपका भक्त बनना वो भी बहुत ऊंचा है मेरे लिए, तो फिर भगवान कहते ठीक है मद याजी, ठीक है यदि भावना भी नहीं है तो मेरी आराधना करो बाहरी रूप से, अर्चना मेरी आराधना करो बाहरी रूप से। तो यदि अर्जुन कहे कि आराधना करना भी बहुत दूर है, बहुत मुश्किल है, तो भगवान कहते हैं माम नमस्कुरु, दंडवत तो कर सकते हो। जैसे श्रील प्रभुपाद जी के एक वरिष्ठ सन्यासी, उन्होंने कुछ गलती कर दी तो प्रभुपाद जी उन्हें बता रहे थे उस गलती के पश्चात कि तीन प्रकार के सेवक होते हैं गुरु के। सबसे पहला सेवक वो होता है कि जब उसे कुछ कहा जाए, नहीं सबसे प्रथम श्रेणी का सेवक वो है कि बिना कहे वो सेवा कर देता है, वो सबसे प्रथम श्रेणी का सेवक है। द्वितीय श्रेणी का सेवक वो है कि उसे कहने के पश्चात वो उस सेवा को करता है। तो अब ये सन्यासी जिन्होंने गलती की थी अब सोच रहे थे कि तो अभी दो हो गए तो तीसरी क्या होगा, तीसरा श्रेणी क्या होगा, जब दूसरे श्रेणी में ही प्रभुपाद जी ने मुझे उतार दिया नीचे। तो उन्होंने तुरंत उस समय प्रभुपाद कहने से पहले दंडवत कर दिया अपना। तो प्रभुपाद कहते हैं थर्ड क्लास इज दंडवत क्लास, क्यों केवल दंडवत करता है। तो प्रभुपाद कहते तुम केवल दंडवत करते रहो उसी में तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, जस्ट रिमेन दंडवत क्लास। तो इसलिए भगवान भी कहते हैं माम नमस्कुरु, यदि सोच भी नहीं सकते, भावना भी नहीं रख सकते, मेरी अर्चना भी नहीं कर सकते, अरे अपने आप का माथा तो टिका सकते हो नीचे। और प्रभुपाद जी कहते थे कि यदि स्वेच्छा से भगवान के सामने दंडवत नहीं करोगे तो फिर माया पीछे से लात मारकर दंडवत कराएगी अंत समय में, और वो दंडवत इतना लंबा होगा कि फिर उठने की कोई आशंका नहीं है इसके अंदर। तो इसीलिए ये जो 10 पैसे का इंद्रिय भोग है इसे पहले फेंकना है। परंतु हम भगवान से अधिक चतुर बनना चाहते हैं कि हम सोचते हैं कि 10 करोड़ में 10 पैसा भी तो है, तो मैं उस 10 करोड़ के अंदर उस 10 पैसे का इंद्रिय भोग भी भोगता रहूंगा। और कैसे, तो हम अपनी साधना भक्ति में अपने इंद्रिय भोग को शामिल कर लेते हैं और फिर उसे नाम देते रहे युक्त वैराग्य। श्रीपाद रूप गोस्वामी कहते हैं कि युक्त वैराग्य होना चाहिए, इसलिए मैं अपने सारे इंद्रिय भोग को युक्त भगवान की सेवा में लगा रहा हूं। शुष्क वैराग्य नहीं होना चाहिए, युक्त वैराग्य होना चाहिए। तो इसीलिए परिपक्व यदि हमें अपनी भक्ति में होना है तो तैयार रहना चाहिए अपने आप को भक्ति की अग्नि में झोंकने के लिए। तैयार रहना चाहिए कि जब तक भक्ति की अग्नि में हम कदम नहीं रखेंगे तो कई बार क्या होता है कि भक्ति की अग्नि जल रही है और हम केवल दूर से ताप रहे हैं कि दूर से अपना हाथ ताप लेते हैं, बस दूर से भक्ति अच्छी लगती है, परंतु वही अग्नि जब थोड़ा निकट जाते हो तो चटका लगता है। यदि सारे मटके ये ठान लें कि हम अगले टाइम से कोई भी अग्नि में नहीं जाएंगे तो कोई भी मटका जो सेवा दे रहा है वो सेवा नहीं दे पाएगा। तो प्रहलाद महाराज का गुणगान हम नरसिंह चतुर्दशी के दिन और रोज प्रहलाद महाराज का गुणगान करते, नरसिंह आरती गाकर, जय प्रहलाद महाराज, जय प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज की जय, महाजन है वो। और श्लोक बोलते हैं, प्रहलाद महाराज ने ये कहा, भागवत में पढ़ना चाहिए प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं, जब नया व्यक्ति आता है तो प्रहलाद महाराज के दिव्य उपदेश पढ़ो। और प्रहलाद महाराज ने जो कठिनाइयां से वो गुजरे, यदि कोई व्यक्ति पूछे कि क्या आप उनमें से एक सैंपल लेना चाहेंगे, तो फिर प्रहलाद महाराज कौन है, तो फिर प्रहलाद महाराज फिर अनजाने बन जाते हैं। तो ये सारे जो भक्त हैं, इनके जीवन में इतनी कठिनाइयां इसलिए आई ताकि हमको सिखाने के लिए कि हमारे स्तर पर वो अग्नि कौन सी है जिसमें हमें प्रवेश करना है अपने आप को परिपक्व बनाने के लिए। और यही यहां पर नारद मुनि अपना उदाहरण व्यास देव जी को सुना रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जो भी आगे चलकर इस भक्ति पथ में आएंगे तो उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि यदि भगवान को प्राप्त करना है तो भगवान को प्राप्त करने के लिए विशेष रूप से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करना है तो उन्हें प्राप्त करने के लिए मूल्य चुकाना होगा। और जब तक वो मूल्य नहीं चुकाएंगे तब तक हमें केवल 10 पैसा ही दिखता रहेगा और केवल हम अपनी आशाएं बांधते रहेंगे कि हाँ मेरा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये सब हो जाएगा, तो केवल वो आशाओं में ही हम फंसे रहेंगे। इसीलिए भागवत कहता है, आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम, कि सबसे बड़ा दुख इस संसार में यही है कि हम अपनी आशाओं से बंधे हुए हैं। तो जब तक हम इस भौतिक संसार के आशाओं से बंधे रहेंगे तब तक हमें लाठी खाने रहनी पड़ेगी माया की, कि माया हमें लाठी खिला खिला कर फिर ये दिखा देगी कि देखो वो गाजर के प्रति तुम्हें आकर्षित होना है और वो है भगवान का नित्य धाम। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है? और उस आध्यात्मिक संसार में केवल गाजर नहीं, गाजर का हलवा और नित्य रूप से मिलता रहेगा। यहां पे गाजर का हलवा क्या है, जैसे एक सर्कस चल रहा था, उस सर्कस में लिखा हुआ था कि 5 क्या मराठी में क्या बोलते, 5 पैसे, 5 पैसे गाजर हलवा। तो व्यक्ति बोले 5 पैसे में गाजर का हलवा मिल रहा है, तो गए अंदर तो एक गाजर को लटकाया हुआ था, तो 5 पैसा भरो गाजर को हिलाओ। तो इस संसार में माया देवी भी गाजर का हलवा प्रस्तुत करती है और कहती है कि 5 पैसे में गाजर हलवा, परंतु आध्यात्मिक संसार में असली गाजर का हलवा मिलेगा। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की।